Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
मैंने रूप देखा, मैंने शब्द सुना, या आंख ने रूप देखा, कान ने शब्द सुना, ऐसे बोलते हो क्या? और जो मैंने रूप देखा वही मैंने शब्द सुना, तो ये शब्द सुनने वाला और देखने वाला तो एक ही हुआ ना। तो पांचों इंद्रियों से जो देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला जो कोई भी है, उसी का नाम आत्मा है। ये न माने जिसके द्वारा ये जाना जाता है। और मैथुनान, मैथुन का सुख जो है वो ये तो प्राणी मात्र को निसर्ग से ही प्राप्त है। और जो लोग शास्त्र को जरा नीचा करके मानते हैं, वो नाम नहीं लेना चाहता इसलिए गोलमोल बोल रहा हूं, वो कहते हैं कि बस सबसे बड़ा सुख संसार में है तो यही है, नर और मादा का, स्त्री और पुरुष का जो मिलन का सुख है, सबसे बड़ा सुख यही है। ये जिसको मिल गया वो कृतकृत्य हो गया नारायण। अब जितने बैठे हैं सबको मिला हुआ है, अब बताओ कृतकृत्य हो गए कि नहीं हो गए? ये सुख है, इतनी बात तो ठीक है। फाइव इन वन, ये जो सेक्सुअल सुख है ये फाइव इन वन है, टू इन वन, थ्री इन वन, फोर इन वन, फाइव इन वन। पांचों ज्ञानेन्द्रियां उस समय एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, इसलिए वहां पर अधिक सुख मालूम पड़ता है। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जो इंद्रिय सुख नहीं है। अभी तो कहा ना कि इंद्रियां तो बाहर वाला ही सुख जान सकती हैं, भीतर वाला सुख तो जान ही नहीं सकती। अच्छा, अब मान लो, कल्पना करो कि पांचों ज्ञान इंद्रियां आपके पास नहीं है। कोई कहते हम तुम्हारी आंख फोड़ दें, कान फोड़ दें, त्वचा को कर दें, फिर भी आप यही कहोगे कि हमको मत मारो। माने अपनी सत्ता का होने का जो सुख है, वो उस सुख का तो हमको ज्ञान ही नहीं है। भोगने का सुख तो हमको ज्ञात है, लेकिन अपने होने का सुख हमको पता नहीं है। अगर हम हैं, ये सुख हमको प्राप्त है, तब तो सुनने का और देखने का और छूने का ये भी सब सुख प्राप्त हो जाएगा। और हम ही न हो नारायण तो क्या होगा? एक कोई माता राम थी, तो वो बहू से उसकी लड़ाई रहती थी, तो एक दिन बहुत दुखी हो गई। तो दुख में आदमी कुछ भी बोल जाता है, तो उसने कहा कि हे भगवान, इससे तो मौत आ जाती तो अच्छा था। अब भगवान ने सुन ली एक दिन उसकी, अब मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई। जब उसका डरावना रूप देखा तो उसने कहा तू कौन है? बोले तू कहती थी ना कि मृत्यु आ जाती तो अच्छा था, मैं मृत्यु हूं। बोले भीतर सो रही है। स्वयं कोई नहीं मरना चाहता है ना, हम मर करके भी जिंदा रहने का ही सुख चाहते हैं। अपनी सत्ता का सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है, और इससे भी बड़ा सुख है अपने ज्ञान, अपने होने के ज्ञान का सुख। जैसे सुषुप्ति में हम होते तो हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होता है वहां। मैं अमुक व्यक्ति हूं, सुषुप्ति में गहरी नींद में ये पता नहीं चलता है, मैं कहां सोया हुआ हूं ये भी पता नहीं चलता, मैं कौन हूं ये भी पता नहीं चलता है, कुछ अनुभव ही नहीं होता है। तो क्या ऐसा अपना सत्ता का सुख चाहते हैं? बोले नहीं, सत्ता भी होनी चाहिए और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। मालूम पड़ता, महाराष्ट्र के शब्द हैं, मालूम पड़ता हुआ हमको सुख चाहिए, जो सुख मालूम ही ना पड़े। सुषुप्ति का सुख सुषुप्ति में तो नहीं मालूम पड़ता है, वो तो जब जगते हैं तब चूंकि अपना शरीर हल्का हो जाता है इसलिए कहते हैं बड़े आराम से सोया। अब ये शास्त्रीय विवाद हैं कि नहीं, उस समय सुख का भी अनुभव होता है, नहीं होता तो सुबह उठ करके कैसे कहता मैं बड़े सुख से सोया। तो इनकी बारीकियों में जाने की बात नहीं, मोटी मोटी बात हम बोल रहे हैं इस समय। तो सुषुप्ति में सुख का अनुभव तो होता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, जैसे जागृत में अपने होने का ज्ञान रहता है और मालूम भी पड़ता है, ऐसा सुषुप्ति में मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, समाधि में मालूम पड़ता है। अगर समाधि और सुषुप्ति का एक सा ही अनुभव हो तो समाधि की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना रहे। तो समाधि में होते भी हैं हम, ज्ञान भी होता है और मालूम भी पड़ता है। मालूम पड़ना और ज्ञान होना एक ही बात है, मालूम पड़ता हुआ अपने होने का सुख और सुख भी होता है। तो ये इंद्रियों के जो सुख हैं ये मूल समस्या नहीं है, मूल समस्या है सुख की। एक तो मृत्यु का भय और एक सुख, हमको सुख प्राप्त हो। तो मूल सुख अगर हमको प्राप्त हो जाए तो उसमें एक महात्मा कहते थे कि ये सनातन धर्म के बारे में बोलते थे कि सनातन धर्म तो जो है ये पटेल का मठ्ठा है, पता नहीं गुजरात की कोई कथा होगी। तो पटेल माने जो जमींदार लोग होते थे, तो उनके यहां गाय भैंस बहुत होती थी तो बड़ा गाढ़ा मठ्ठा होता था। अब जो छोटभैये होते थे वो क्या करते थे कि उनके यहां से पहले मठ्ठा वट्ठा कोई बेचता नहीं था, अब तो बेचने लगते हैं लोग, तो वो उसके यहां से मठ्ठा ले आते गाढ़ा गाढ़ा और उसमें अपना पानी मिला लेते और मिला के फिर अपने से और छोटे लोगों को देते, वो उसमें और पानी मिला के देते। तो बोले ये सनातन धर्म जो है ये तो पटेल का मठ्ठा है, और ये जितने आचार्य हैं संप्रदाय हैं ये सब ने अपने अपने पानी मिला लिए, अब अपने अपने नाम से उसको प्रचारित करते हैं। तो ये जो मूल सुख है ना, आत्मा का सुख जो है, ये पटेल का मठ्ठा है नारायण। अगर ये एक दफे हाथ में आ गया, माने इसकी अनुभूति हमको हो गई, तो फिर ये इंद्रिय सुख तो उसी में पानी मिलाए हुए हैं। किसी में रूप का पानी मिला हुआ है, किसी में कान का पानी मिला हुआ है, किसी में किसी का पानी मिला हुआ है। तो कहते हैं ये सोचो इसमें कि येन रूपम रसम गंधम, ये तो ज्ञान की बात हुई, रूप का ज्ञान किससे होता है, रस का ज्ञान किससे होता है, गंध का ज्ञान किससे होता है, शब्द का ज्ञान किससे होता है, स्पर्श का ज्ञान किससे होता है, और मैथुनान माने जो गंभीर सुख है उस सुख का ज्ञान किससे होता है। एते नैव विजानाति, ये जिसके द्वारा ये सब का सब विजानाति माने विस्पष्टम जानाति, साफ साफ जिससे मालूम पड़ता है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि जैसे वो रेडियो एक्टिव बॉडीज होती है ना, अभी तो सब समझते हैं कि आप परमाणु धर्मी जो वस्तुएं हो, जैसे रेडियम यूरेनियम है, अब उसे मान लो यहां रख दो तो दिखेगा तो नहीं आपको, लेकिन उसके विकिरण जो हैं, वो जो उसकी श्वाएं रेज हैं, वो निकल निकल के आप सबको प्रभावित कर देंगे थोड़ी देर में। ऐसे ही नारायण ये जो शरीर है ये बिल्कुल इसमें से एक एक कण में से ज्ञान निकल रहा है, और ज्ञान ही निकल रहा है नहीं, आनंद भी निकल रहा है, सुख भी निकल रहा है, और ये सब निकल के सबको प्रभावित करता है। जहां मित्र होता है तो क्यों प्रसन्न हो जाते हो भाई, क्या चीज मिल गई आपको, तो मित्र के भाव से वही आपका जो ज्ञान जो सुख निकल रहा था ना वही आपको आनंदित कर देता है। और जहां दुश्मन आ गया तो वहां पर वो भाव चढ़ गया दुश्मन का, है वही आनंद, दूर से मालूम पड़ा कि दुश्मन आ रहा है और पास से मालूम पड़ा करे ये तो मित्र है दुश्मन नहीं है। तो एक दफे आपको कष्ट हुआ एक दफे आपको सुख हुआ, तो क्या ये सुख और कष्ट दोनों इसमें से निकले? बोले नहीं, इसमें से तो सुख ही सुख निकला। एक दफे उसके ऊपर कष्ट चढ़ गया दुख चढ़ गया और एक दफे उसके ऊपर सुख चढ़ गया। तो ये मित्रता का और दुश्मनी का जो ये भाव चढ़ जाते हैं इससे वो आनंद जो है वो कभी सुख रूप मालूम पड़ता है कभी दुख रूप मालूम पड़ता है। अब समझ लो आप आनंद और सुख का अंतर क्या हुआ। आनंद जो है उसको बोलते हैं जो सुख में भी रहता है और दुख में भी रहता है। अच्छा, रोने में सुख है कि दुख है? भगवान के लिए रो, देखो उस समय और पहले, उस समय भी और बाद में भी और पहले भी कितना आपको आनंद आएगा। अपने प्रिय के लिए रो, माने लौकिक संबंधों में भी रो, रोते ही हैं, तब भी जो है अगर मर जाए कोई आदमी और कोई आदमी रोवे नहीं तो डॉक्टर लोग कहते हैं इसको रुलाओ, रुलाएगा नहीं तो ये बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, दिमाग पे असर हो जाएगा। एक महिला थी तो उसके पति का कत्ल हो गया था। अब वो ब्रेवेडो में जो आकर के बोले मैं इतनी वो हूं बहादुर के मैं नहीं रोऊंगी, और सबने बहुत ही कोशिश की कि ये रो जाए किसी तरह से, नहीं रोई, आखिर में वो विक्षिप्त हो गई। तो कहीं कहीं रोना जो है वो आवश्यक भी होता है, कहीं रोना सुख रूप भी होता है। आनंद वो है जो रोने में भी है और सुखने में और सुख में भी है, हंसने में भी है। तो इसलिए ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके साथ ये मैथुनान एक शब्द और जोड़ दिया श्रुति ने, इसमें सभी सुखों को शामिल कर लेना चाहिए। सारे सुख जिससे जाने जाते हैं, सारे विषयों का ज्ञान जिससे होता है कि मत्र परिशिष्यते, उसको यदि जान लिया तो फिर जानना और क्या बाकी रहेगा, और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं कि सब लोग जानते हैं तो यही जानते हैं कि ये शरीर ही जान रहा है, ये तो कोई नहीं कहता है कि मैं आत्मा होकर के जान रहा हूं, अपने को शरीर मान करके ही सब लोग जानते हैं। तो बोले अच्छा ये शरीर क्या है, ये देखो इसमें शरीर में शब्द होता है कि नहीं होता है, शरीर को स्पर्श करो तो आप स्पर्श होता है कि नहीं होता है, इसमें रूप है कि नहीं है, आकार है आकृति है रंग है। अच्छा इसको जीभ से चाटो नारायण तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? अब वो जरा है तो हंसी की बात मगर आ गई है तो सुना देते हैं, महाराष्ट्र की सुनाई हुई है, उससे जरा विषय थोड़ा हल्का हो जाता है। कोई एक आदमी था तो वो स्त्री पुरुषों में पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, तो उनका किसी तरह से इनको लड़ा हुआ आपस में तो पति से कहा कि ये पत्नी जो है ना ये सर्पिणी है, सर्पिणी। बोले सर्पिणी? कि हाँ, तुम देखना जब तुम रात को सो जाओगे तब ये तुम्हें चाटेगी। अब नारायण प्रेम में तो चाटा चूटी होती है। अब वो रात को उसने जब चाटा बोले हट, दूसरे दूर हट, तू तो सर्पिणी है नारायण। अब हो गई लड़ाई शुरू हो गई। तो बोले शरीर में तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध चार पांचों चीजें हैं, अगर तुम ये कहते हो कि शरीर ही जानता है तो इसका मतलब है रूप रूप को जानता है, गंध गंध को जानता है, शब्द शब्द को जानता है, तो फिर तो ये वाला रूप इस रूप को जान लेगा, ये वाला रूप इस रूप को जान लेगा, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है जानने में आने की। इसलिए भाई शरीर नहीं जानता है, शरीर के भीतर जो आत्मदेव बैठे हैं उन्हीं की शक्ति से नारायण ये जानता है। एक है शक्ति और एक है ज्ञान, इसका विवेक जरा है तो गंभीर। एक है शक्ति और एक है ज्ञान। देखो आत्मा को क्या बोलते हैं, सत चित आनंद। तो जब ये सत चित आनंद तीन है कि एक है, एक ही है, सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसे बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद रूप है। तो सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, ये तीन तीन नहीं है। लेकिन जब ये तीन अलग अलग होने लगते हैं तो वही ज्ञान शक्ति रूप हो जाता है। शक्ति माने सत और चित, सत और चित जब अलग अलग हो जाते हैं तो उस ज्ञान को ही शक्ति बोलते हैं। माने जैसे ये पुस्तक है तो ये तो सत रूप हो गई और मैं जानने वाला हो गया। अब ये जो मैं इस पुस्तक को जान रहा हूं तो मैं ज्ञाता ज्ञान अलग हो गया और ये सत जो वस्तु जानने में आ रही है ये सत अलग हो गया। तो अलग हो करके सत और चित जब अलग हो गए तो बिना ज्ञान में शक्ति आए हुए नहीं जान सकते। बिना बीच में कोई ना कोई नेत्र चाहिए, कोई स्पर्श चाहिए, कुछ चाहिए। तो ये जितनी इंद्रियां हैं ये सब शक्ति के विलास हैं, अर्थात सत और चित इनका अलगाव हो जाने से है। ये हुआ कब अलगाव? बोले जब ये पैदा हुए थे ना तो उस समय अज्ञानी थे कि ज्ञानी थे? ज्ञानी होते तो पैदा ही नहीं होते, तो अज्ञानी थे। अज्ञानी थे तो सच्चित आनंद को हम एक समझते ही नहीं थे, इसलिए वो ज्ञान ही शक्ति रूप हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि आप फिर सच्चित आनंद को एक नहीं समझ लेते। फिर वो शक्ति काम तो करेगी जब तक ये प्रारब्ध है शरीर का, लेकिन वो आपको शक्ति शक्ति नहीं मालूम पड़ेगी, ज्ञान ही मालूम पड़ेगा। और जो विवेकी हैं बीच के लोग हैं उनको ज्ञान अलग मालूम पड़ता है, शक्ति अलग मालूम पड़ती है। और जो और तीसरी कक्षा में है, सबसे नीचे की कक्षा में है, उन्हें ज्ञान मालूम ही नहीं पड़ता है, शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। शक्ति से भिन्न ज्ञान नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो शक्ति और ज्ञान का विवेक जो है ये वेदांत में होना आवश्यक है। तो ये नारायण शरीर नहीं जानता है, आत्मा ही जानता है। शरीर तो ज्ञेय है, जानने में आने वाली चीज है। शरीर से जानता है ऐसा भी नहीं है, आत्मा से शरीर को जानता है। और बीच में क्या है कि कारण, इंद्रियां, मन। ये मन भी इंद्रिय ही है। तो ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। जिसने इसको जानने वाले को ये समझ लिया कि यही मैं आत्मा हूं, अब उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहा। यहां भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी है, सर्वम एव स्वात्मना विज्ञेयम्, सब कुछ अपने आत्मा से ही जाना जाता है। यस्य आत्मनो विज्ञेयम् न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञः। जिससे जिस आत्मा से कोई दूसरा विज्ञेय बाकी नहीं रहता है वो आत्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का आप क्या अर्थ समझते हो? जनरल पब्लिक क्या अर्थ समझती है? ये सर्वज्ञ है, बताओ हमारे मन में क्या है, बताओ कलकत्ते में इस समय क्या हो रहा है। यही तो समझते हैं ना सर्वज्ञ का अर्थ। हाँ, तो ये सर्वज्ञ का अर्थ नहीं है वेदांत में। आप कलकत्ते में क्या हो रहा है ये जानो तब भी आत्मा से ही जानोगे, और इस समय यहां क्या हो रहा है ये जानो तब भी आत्मा से ही जानोगे, अपने मन में क्या हो रहा है तब भी आत्मा से ही जानोगे। आप बिना आत्मा के कुछ जान के बताओ, तो बिना आत्मा के तो कुछ जानने में आता नहीं। जानने वाला होना चाहिए, इसलिए ये जानने वाला ही असल में सर्वज्ञ है। इसमें से वालापन निकल जाए तो आत्मरूप से सर्वज्ञ है, और ये वाला अभिमानी बनोगे सर्वज्ञता के तो नारायण ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। बोले ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो वेदांत क्या कहता है कि जीव ईश्वर है, या ये कहता है कि जीव ब्रह्म है? जीव ब्रह्म है ये कहता है, जीव ईश्वर है ऐसा नहीं कहता है। ईश्वर में जो सर्वज्ञता होती है वो माया की उपाधि के कारण है। जैसे मेरा शरीर इतना बड़ा है तो इसमें भीतर मेरे मन में क्या हो रहा है ये तो मैं जानता हूं ना। अगर मान लो मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए जितना बड़ा हॉल है, तो मैं आपके सबके मन की बात जान जाऊंगा। उपाधि यदि हमारी बड़ी हो जाए तो आप सब मेरे भीतर आ जाओगे ना, तो मैं सबके मन की बात जान जाऊंगा। तो ईश्वर की उपाधि माया है, तो उस माया के भीतर तो सारे ही शरीर हैं, इसलिए वो सबके मन की बात जानता है। परंतु वो उपाधि को बड़ा नहीं करना है, और ना उपाधि किसी की बड़ी हो सकती है। वो तो जिसकी जैसी बन गई वो बन गई ना रहे। ईश्वर का पुनर्जन्म नहीं होता है, जीव का ही पुनर्जन्म होता है। तो जीव जो है अपनी छोटी सी उपाधि लेकर के आता है, और उस उपाधि के दायरे में ही वो ये जान सकता है कि आत्मा सर्वज्ञ है। अच्छा, ईश्वर और परमात्मा और आत्मा ये तीन चीज है कि एक ही चीज है? एक ही चीज है ना। तो जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो परमात्मा सर्वज्ञ है, और वही आत्मा है, इसलिए आत्मा भी सर्वज्ञ है। इसमें से वालापन का जो अभिमान है इसको निकाल दो। ये वालापन जो है यही परिच्छिन्न करता है नारायण। ए तद वही तत्, यही है वो आत्मा नचकेता जिसको तूने पूछा था, जो धर्म से परे है अधर्म से परे है। तद विष्णु परमं पदम, ये पहले श्रुति आ चुकी है, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यस्मात् परम नास्ति, जिससे परे और कुछ नहीं है। यद्वा एतद् अधिगतम् इत्यर्थ। अब बस ये ज्ञात हो गया नारायण, तो आप सर्वज्ञ रूप से बैठे हो। ये इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, विचार करने की जरूरत है। अब ये ही देव कठोपनिषद का मंत्र है, ये शुक रहस्य उपनिषद में जिसको पंचदशीकार ने महावाक्य प्रकरण के रूप से पांचवां चैप्टर बनाया है, उसमें ये पहला मंत्र जो है, ये नेक्षते शृणोति इदम् जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु अस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानम् उदीरितम्। बोले जिसके द्वारा ये देखता है, जिसके द्वारा ये सुनता है, जिसके द्वारा ये सूंघता है, जिसके द्वारा ये बोलता है, स्वादु को अस्वादु को जो जानता है, तत्प्रज्ञानम् उदीरितम्, उसको ही प्रज्ञान बोलते हैं। और ये प्रज्ञान क्या है कि प्रज्ञानम् ब्रह्म, ये महावाक्य है नारायण। ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है, वो प्रज्ञान ब्रह्मा जी में है, वो प्रज्ञान विष्णु भगवान में है, वो प्रज्ञान शंकर भगवान में है, वो प्रज्ञान मनुष्य में है, देवता में है, मच्छर में है, मक्खी में है, सब में अपनी अपनी इंद्रियों को करण को लेकर के ये प्रज्ञान है। सब अपना अपना भोग रहे नारायण, इसलिए ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है। देखो ये जो बात है ना कि हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस शरीर में आए हैं, और ये जरा वेदांत की समझ से थोड़ी नीची बात है। जब अपने को आप भोक्ता मानते हो तब ये बात आती है कि कर्म फल का। अच्छा, मच्छर जो है वो अपने कर्म फल का भोग भोग रहा है कि नहीं? मनुष्य भी भोग रहा है, देवता भी भोग रहा है, जितने भी शरीरधारी हैं सब अपने अपने कर्मफल को भोग रहे हैं। तो ये कर्मफल का जो भोग है, तो कोई करता होगा तब ना कर्मफल का भोग भोगेगा, कोई भोगता होगा तब ना कोई भोग भोगेगा। और आत्मा करता है कि भोगता है कि कर्ता भोगता नहीं है, तो इतना ही तो सब बताया जाता है ना कि ये आत्मदेव जो है ये कर्ता भोगता नहीं है। तो यदि मैं आत्मा हूं तो मैं अपने कर्मफल का भोग भोग रहा हूं, ये जरा दृष्टि थोड़ी नीची है। ये जीव धर्म के अंतर्गत आती है, ये आत्मधर्म के अंतर्गत नहीं आती है। इन सबको मिक्सअप कर देने से यह होता है कि जो असली बात है वो छूट जाती है। अब ये कक्षा छोड़ दो आप, माने फॉर द टाइम बींग छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए कि मैं जीव हूं, मैं कर्मफल का भोग भोग रहा हूं। अरे आप तो टॉर्च हो, हंडा हो, जैसे हंडा जलता रहता है और चारों तरफ प्रकाश होता रहता है। आप एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट अपने घर पर बैठ करके ये सोचो कि मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, सबको प्रकाशित कर रहा हूं, बस शब्द को भी प्रकाशित कर रहा हूं, स्पर्श को भी, रूप को भी, रस को भी, गंध को भी, सुख को भी, दुख को भी, सर्व को भी, अल्प को भी, दुख और क्या, स्वर्ग को भी और नरक को भी, सबको प्रकाशित कर रहा हूं। बस हंटा हूं मैं तो। जैसे यहां पे कोई बहुत बड़ा लैंप लटका दे तो सबको प्रकाशित करता रहता है। अब चाहे सबके सब यहां बैठे हों और चाहे यहां से सब उठ के उठ चले जाए, हंडा जलता रहेगा। तो ये शरीर रहे और चाहे ये शरीर ना रहे, हंडा तो जलता ही रहेगा। नारा ये एक शरीर के ऊपर निर्भर नहीं है। ये एक शरीर में होता है तो उस शरीर के जैसे अब ये बल्ब है तो बल्ब के भीतर भी प्रकाश होता है और बल्ब के बाहर भी प्रकाश होता है। लेकिन वो प्रकाशक जो है वो तो फिलामेंट है ना, भीतर का जो तार है, जो भीतर का तार है, प्रकाश तो उसमें हो रहा है और वो भीतर भी प्रकाशित कर रहा है और बाहर भी प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसे ही इस हॉल के भीतर भी प्रकाशित कर रहा है। तो सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य तो नारायण मर जाएगा, एक दिन पैदा हुआ है। स्वयं प्रकाश तो उसको कहते हैं। ये अपेक्षा से तो स्वयं प्रकाश है, मोमबत्ती की अपेक्षा से तो स्वयं प्रकाश है, लेकिन स्वयं प्रकाश नहीं है। सूर्य को जानने के लिए आपका होना जरूरी है। आप नहीं होगे तो सूर्य को जानेगा कौन? बोले सूर्य सूर्य को ही जानता है। तो ये कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं इसको शास्त्र में। आप अपने आप को नहीं जानते हो, आपने जो अपने आप को गलत जान रखा है इसको काटना है, यही अविद्या है। बस गलत जानना बंद कर दो तो जोंका त्यों रेडीमेड मामला है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।